अनिवार्य ओपनिंग नरेशन। एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथ सार में स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिकी साहित्य के एक ऐसे नगीने की जिसने आप कह सकते हैं लगभग एक सदी से पाठकों को अपनी गिरफ्त में ले रखा है, एफ स्कॉट फिट्ज़गेरॉल्ड का द ग्रेट गैट्सबी।
हाँ बिल्कुल, और सोचने वाली बात है कि इसमें ऐसा क्या है जो आज भी इतना इतना रेलेवेंट लगता है।
शायद वो अमेरिकी सपने वाला सवाल जो कभी पूरी तरह सुलझता ही नहीं।
हाँ, और उस सपने के पीछे भागता एक बहुत ही रहस्यमयी किरदार जे गैट्सबी।
फिट्ज़गेरॉल्ड खुद भी तो मतलब उसी दौर की पैदाइश थे, 1896 से 1940 का उनका जीवन काल, और वो जैज एज, वो रोरिंग ट्वेंटीज।
बिल्कुल, पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था, अमेरिका में पैसा था, पार्टियां थीं, एक नई तरह की आज़ादी
जी,
और पुरानी सामाजिक मान्यताएं टूट रही थीं। फिट्ज़गेरॉल्ड की अपनी जिंदगी में भी वो चमक, वो उतार चढ़ाव, फिर वो मायूसी, सब कुछ था, और उसका अक्स कहीं ना कहीं उनके किरदारों में दिखता है ना?
हाँ दिखता है। और मज़े की बात यह है कि 1925 में जब ये किताब छपी द ग्रेट गैट्सबी, तो इसे वो स्टारडम नहीं मिला जो आज है।
हाँ बिल्कुल नहीं, बिक्री भी ठीक ठाक ही थी और रिव्यूज भी मिले जुले थे।
फिट्ज़गेरॉल्ड के जीते जी तो ये लगभग गुमनाम ही रही, लेकिन फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद पता नहीं कैसे इसे दोबारा खोजा गया।
हाँ, और फिर तो ये अमेरिकी साहित्य का एक जरूरी हिस्सा बन गए, स्कूलों में, कॉलेजों में एक क्लासिक मानी जाती है आज।
और शायद इसकी वजह है इसकी भाषा कितनी काव्यात्मक है और वो गहरी मनोवैज्ञानिक पढ़ते हैं।
और वो बड़े सवाल जिनसे ये किताब जूझती है, अमेरिकी सपना क्या सिर्फ एक ख्वाब है, एक छलावा? दौलत, क्लास, इनका असल मतलब क्या है?
क्या हम वाकई अतीत को बदल सकते हैं या उसे फिर से जी सकते हैं? प्यार और मोहभंग कितनी पतली सी लाइन है दोनों के बीच।
बिल्कुल, तो आज हम इन्हीं सब सवालों के आसपास घूमती इस कहानी की गहराइयों में उतरने की कोशिश करेंगे।
चलिए, तो कहानी शुरू होती है 1922 की गर्मियों में। जगह है न्यूयॉर्क के पास लॉन्ग आइलैंड। यहाँ दो काल्पनिक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इलाके हैं, वेस्ट एग और ईस्ट एग।
और यही एंट्री होती है हमारे नरेटर निक कैरवे की, मिडवेस्ट से आया एक नौजवान बॉन्ड बिजनेस में अपना करियर बनाने।
हाँ, और वो वेस्ट एग में एक छोटा सा साधारण सा घर किराए पर लेता है, और उसकी ठीक बगल में है एक बहुत बड़ी आलीशान हवेली,
महल नुमा कह सकते हैं, जिसके मालिक है वो रहस्यमयी करोड़पति जे गैट्सबी।
अब ये वेस्ट एग और ईस्ट एग सिर्फ पते नहीं है।
नहीं नहीं, ये तो सोशल स्टेटस के सिंबल हैं एक तरह से। वेस्ट एग मतलब नया पैसा, वो लोग जिन्होंने अभी अभी दौलत कमाई है, शायद थोड़े दिखावा पसंद भी हो,
अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगे हुए। और खाड़ी के उस पार है फैशनेबल ईस्ट एग,
जहाँ पुराना पैसा रहता है, मतलब खानदानी रईस जिनके पास पीढ़ियों से दौलत है, एक अलग तरह का रुतबा है, तौर तरीके हैं।
और ये जो फासला है ना नए और पुराने पैसे के बीच, ये कहानी के सेंटर में है।
बिल्कुल,
तो ने कहानी की शुरुआत में ही हमें ईस्ट एग ले जाता है अपनी कजन डेजी बुकानन से मिलने।
डेजी की शादी हुई है टॉम बुकानन से, बहुत अमीर, पहले नामी खिलाड़ी रह चुका है, लेकिन अब
उतना ही अहंकारी, थोड़ा दबंग और नस्लवादी सोच वाला भी।
डिनर पर ही उसका असली रंग देखने लगता है।
माहौल में एक अजीब सी बेचैनी घुल जाती है ना। वहीं निक की मुलाकात जॉर्डन बेकर से भी होती है।
हाँ, जॉर्डन बेकर, फेमस गोल्फर, थोड़ी सी निंदक कह सकते हैं, थोड़ी लापरवाह।
और डिनर के दौरान ही टॉम की प्रेमिका का फोन आता है न्यूयॉर्क से।
जी, और वो डेजी और टॉम के रिश्ते का जो खोखलापन है, वो पहली मुलाकात में निक को समझ आ जाता है।
उस रात जब निक वेस्ट एग लौटता है, तब वो पहली बार गैट्सबी को ठीक से देखता है।
हाँ, वो अपने लॉन के अंधेरे में अकेला खड़ा है, हाथ फैलाए हुए, खाड़ी के उस पार, पानी के दूसरी तरफ एक हरी बत्ती जल रही है, उसे देख रहा है
जैसे उसे पकड़ लेना चाहता हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी, एक गहरी तड़प दिखती है निक को।
और वो हरी बत्ती,
हाँ वो हरी बत्ती, वो सिर्फ एक लाइट नहीं रह जाती, वो एक सिंबल बन जाती है, गैट्सबी के सपने का, उसकी उम्मीद का, उसके अतीत का, डेजी का।
बिल्कुल, ये बत्ती पूरे कहानी में बार बार आती है, एक शक्तिशाली प्रतीक की तरह।
लेकिन कहानी सिर्फ इन अमीर इलाकों तक ही सीमित नहीं है, फिट्ज़गेरॉल्ड हमें एक और जगह भी दिखाते हैं।
हाँ, राख की घाटी, वैली ऑफ एशेज, ये वेस्ट एग और न्यूयॉर्क शहर के बीच का एक उजाड़ बेरंग इंडस्ट्रियल इलाका है
जहां सब कुछ राख और धूल से ढका हुआ है। ये उस चमक दमक वाली दुनिया का दूसरा बदसूरत पहलू है।
ये अमीरों की लापरवाही से पैदा हुई गरीबी और नाउम्मीदी का प्रतीक है, अमेरिकन सपने का अंधेरा कोना।
और इस घाटी पर नजर रखे हुए हैं दो विशाल आंखें।
हाँ, एक पुराने बिलबोर्ड पर बनी डॉक्टर टीजे एक्लिबर्ग की आंखें चश्मे के पीछे से घूरती हुई, जैसे कोई उदासीन भगवान हो जो सब देख रहा है पर कुछ नहीं कर रहा।
ये आंखें भी एक प्रतीक हैं, शायद उस समाज का जहां नैतिक जिम्मेदारी खत्म हो गई है।
इसी राख की घाटी में जॉर्ज विल्सन का गैराज है, एक सीधा साधा कुछ हारा हुआ सा मैकेनिक।
हाँ, और उसकी पत्नी है मर्टल विल्सन, जिसमें एक बेचैनी है, बड़े सपने देखने की चाह है।
और यहीं टॉम बुकैनन निक को मर्टल से मिलवाता है। मर्टल टॉम की प्रेमिका है।
फिर वो लोग शहर जाते हैं टॉम के उस छोटे से अपार्टमेंट में जहां वो मर्टल से मिलता है। वहां एक पार्टी होती है।
हाँ, एक भद्दी सी बेकाबू पार्टी। और वहीं मर्टल नशे में डेजी का नाम ले लेती है।
और टॉम
गुस्से में उस पर हाथ उठा देता है, उसकी नाक तोड़ देता है। ये घटना भी उस दुनिया की क्रूरता और
अस्थिरता को दिखाती है।
इसके बाद निक को गैट्सबी की उन मशहूर पार्टियों में से एक का न्योता मिलता है। हाँ, गैट्सबी की पार्टियां, जरा सोचिए क्या नज़ारा होता होगा। हवेली रोशनी में नहाई हुई, बाग में ऑर्केस्ट्रा, मैनहट्टन से सैकड़ों मेहमान,
नाच गाना, शराब, जश्न।
लेकिन अजीब बात यह है कि ज्यादातर मेहमान अपने मेजबान को जानते तक नहीं, बस अफवाहें फैलाते हैं
गैट्सबी के बारे में।
क्या अफवाहें?
तरह तरह की। कोई कहता है वो जर्मन जासूस था किसी जमाने में, कोई कहता है उसने किसी का खून किया है।
बाप रे।
इन्हीं सब के बीच निक की मुलाकात आखिरकार गैट्सबी से होती है। गैट्सबी की मुस्कान, निक कहता है उसमें एक खास किस्म की गर्मजोशी है जो आपको फौरन अपना बना ले।
लेकिन फिर भी उसमें एक दूरी है, एक रहस्य है।
हाँ बिल्कुल, ये पार्टियां भी तो उस जैज एज समाज के खोखलेपन को दिखाती हैं। बाहर से जश्न, अंदर से खालीपन, लोग बस भटक रहे हैं,
कोई गहरा कनेक्शन नहीं।
और गैट्सबी खुद अपनी ही पार्टी में एक पहेली बना रहता है। आखिर क्या राज है उसकी शानो शौकत के पीछे?
और ये राज खुलता है जॉर्डन बेकर के जरिए। वो निक को बताती है गैट्सबी का सच।
क्या सच?
कि 5 साल पहले लुइसविल में, जब गैट्सबी सेना में एक नौजवान गरीब ऑफिसर था, उसका और डेजी का गहरा प्यार था।
अच्छा।
लेकिन गैट्सबी को युद्ध पर जाना पड़ा और पीछे डेजी ने, शायद परिवार के दबाव में, अमीर टॉम बुकानन से शादी कर ली।
ओहो।
गैट्सबी ने पिछले 5 साल सिर्फ और सिर्फ दौलत कमाने में लगा दिए, ये हवेली, ये पार्टियां, ये सब कुछ सिर्फ डेजी को वापस पाने के लिए।
उसने वेस्ट एग में घर भी इसीलिए लिया ताकि वो डेजी के घर के ठीक सामने रह सके, उस हरी बत्ती के पास।
बिल्कुल, उसका पूरा जीवन, उसकी पूरी पहचान डेजी को पाने की एक बहुत बड़ी विस्तृत योजना है।
ये तो जुनून की हद है। वो सिर्फ अमीर नहीं बनना चाहता, वो वक्त को पीछे ले जाना चाहता है। क्या ये मुमकिन है?
गैट्सबी को तो लगता है कि मुमकिन है। वो निक से मदद मांगता है डेजी को चाय पर बुलाने के लिए, ताकि गैट्सबी वहां अचानक आ सके।
और निक मान जाता है?
हाँ, थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मान जाता है। मुलाकात वाले दिन बारिश हो रही होती है, गैट्सबी बहुत नर्वस है किसी बच्चे की तरह।
और जब डेजी आती है
तो शुरू में थोड़ी अजीब सी खामोशी रहती है, फिर धीरे धीरे पुरानी यादें ताज़ा होती हैं, वो प्यार की चिंगारी शायद फिर से महसूस होती है।
फिर गैट्सबी उन्हें अपनी हवेली दिखाता है।
हाँ, और अपनी दौलत का प्रदर्शन भी करता है, थोड़ा भद्दा प्रदर्शन कह सकते हैं, अपनी महंगी कमीजों का ढेर डेजी के सामने फेंक देता है।
और डेजी?
डेजी उन कमीजों पर सिर रखकर रो पड़ती है। शायद वो अभिभूत है, शायद कन्फ्यूज है, शायद गैट्सबी के प्यार और उसकी दौलत के मिले जुले असर से, कहना मुश्किल है।
ये पल तो गैट्सबी के सपने के शिखर जैसा लगता है। बारिश रुक जाती है, धूप निकल आती है, जैसे उसने अतीत को पकड़ लिया हो।
हाँ बिल्कुल, सब कुछ परफेक्ट लगता है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये हकीकत है या सिर्फ एक खूबसूरत भ्रम? और गैट्सबी की अपनी हकीकत क्या है? वो असल में कौन है?
हाँ, ये भी एक सवाल है।
कहानी हमें बाद में बताती है कि गैट्सबी का असली नाम जेम्स गेट्स था। वो नॉर्थ डकोटा के एक गरीब किसान परिवार से था।
अच्छा।
लेकिन उसमें शुरू से ही बहुत महत्वाकांक्षा थी। उसने अपनी पुरानी पहचान पीछे छोड़ दी, खुद को जे गैट्सबी के रूप में गढ़ा। इसमें उसकी मदद एक रईस आदमी डैन कोडी ने की,
जिसके साथ उसने कई साल समुंदर पर बिताए और अमीरों के तौर तरीके सीखे।
जी, लेकिन कोडी की मौत के बाद उसे विरासत में कुछ खास मिला नहीं। मतलब उसकी ये जो दौलत है, इसका स्रोत अभी भी रहस्यमय है, शायद अवैध तरीकों से कमाई गई है।
तो ये सेल्फ मेड मैन वाली कहानी है, अमेरिकी सपने का एक रूप, लेकिन ये झूठ और शायद अपराध पर बनी है।
यही उसके चरित्र का विरोधाभास है। एक तरफ उसका वो रोमानी सपना, दूसरी तरफ उसे पाने के लिए अपनाए गए शायद गलत रास्ते।
क्या डेजी इस सच को समझ पाती है?
शायद पूरी तरह नहीं। एक शाम टॉम और डेजी गैट्सबी के एक पार्टी में आते हैं। डेजी को वो माहौल पसंद नहीं आता।
क्यों? उसे क्या दिक्कत होती है?
उसे वो नए पैसे वालों का दिखावा, वो शोर शराबा अभद्र लगता है, बेस्वाद लगता है। वो पुराने पैसे वाली है, उसे वो तौर तरीके रास नहीं आते।
और गैट्सबी?
गैट्सबी से बहुत परेशान हो जाता है। वो निक से बाद में कहता है, क्या वो समझी नहीं, मैं सब कुछ ठीक वैसे ही कर दूंगा जैसा पहले था।
यही उसके सपने की असंभवता सामने आती है। वो सिर्फ डेजी को नहीं, बीते हुए 5 सालों को मिटाना चाहता है।
बिल्कुल। और यही वो पुराने और नए पैसे का टकराव भी खुलकर सामने आता है। डेजी की ये अस्वीकृति गैट्सबी के सपने की नाजुक बुनियाद को हिला देती है।
और ये टकराव अब एक निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है।
हाँ, उपन्यास का क्लाइमैक्स। एक बहुत गर्म उमस भरी दोपहर, सब बेचैन है। डेजी अचानक शहर चलने का सुझाव देती है
और वे न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल पहुंचते हैं।
जी,
वहाँ एक प्राइवेट कमरे में टॉम और गैट्सबी के बीच सीधी टक्कर होती है।
टॉम ने गैट्सबी के अतीत की पूरी छानबीन कर ली है।
वो गैट्सबी पर इल्जाम लगाता है।
हाँ, उसे बूटलेगर कहता है, अवैध शराब का धंधा करने वाला, और शायद उससे भी बड़ा अपराधी। वो डेजी पर गैट्सबी के हक को चुनौती देता है, उसे चुनने के लिए मजबूर करता है।
तनाव बहुत बढ़ जाता होगा।
बहुत ज्यादा। गैट्सबी अपना आपा खो देता है। वो डेजी से मांग करता है कि वो टॉम के मुंह पर कहे कि उसने टॉम से कभी प्यार नहीं किया।
और डेजी, क्या वो ऐसा कहती है?
उस पर भयानक दबाव होता है। वो हिचकिचाती है, टॉम को देखती है, गैट्सबी को देखती है, और फिर टूट जाती है। वो मान लेती है कि उसने गैट्सबी से प्यार किया था, लेकिन वो ये भी कहती है कि उसने टॉम से भी प्यार किया था। तुम बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हो, वो गैट्सबी से कहती है।
और बस यहीं गैट्सबी का सपना चकनाचूर हो जाता है।
हाँ, उसका वो आदर्श जिसमें डेजी ने सिर्फ उसी से प्यार किया था, वो टूट जाता है। ये उसके लिए हार है। टॉम की दुनिया, उसकी क्रूर हकीकत गैट्सबी के सपने पर भारी पड़ती है।
इसके बाद वापसी का सफर शुरू होता है।
और वो सफर त्रासदी लेकर आता है। डेजी बहुत परेशान है। वो गैट्सबी की पीली कार चला रही है, गैट्सबी बगल में है
और राग की गाड़ी के पास।
हाँ, वहीं जॉर्ज विल्सन की पत्नी मर्टल अपने पति से झगड़कर बदहवास सड़क पर भागती है। शायद वो टॉम की कार समझकर उसे रोकने की कोशिश करती है,
लेकिन सामने गैट्सबी की कार होती है।
जी, और डेजी उसे जोर से टक्कर मार देती है। मर्टल की वही मौत हो जाती है।
और डेजी रुकती नहीं।
नहीं, घबराहट में वो कार भगा ले जाती है।
ये तो उसकी चरम लापरवाही है, उसकी कायरता है। और गैट्सबी क्या करता है?
गैट्सबी डेजी के लिए अपने प्यार का आखिरी दुखद सबूत देता है। वो फैसला करता है कि वो इल्जाम अपने सर ले लेगा। वो डेजी को बचाना चाहता है।
अपने टूटे हुए सपने के आखिरी टुकड़े को बचाने के लिए वो खुद को कुर्बान करने को तैयार है। जबकि डेजी
अपनी दुनिया में, अपनी सुरक्षा में छिप जाने को तैयार है।
उस रात निक गैट्सबी को डेजी के घर के बाहर पहरा देते हुए पाता है।
हाँ, उसे डर है कि कहीं टॉम डेजी को कोई नुकसान न पहुंचाए। गैट्सबी अब भी डेजी के फोन का इंतजार कर रहा है।
और उधर राख की घाटी में
जॉर्ज विल्सन दुख और गुस्से से पागल हो चुका है। उसे यकीन है कि जिस पीली कार ने मर्टल को मारा, उसे मर्टल का प्रेमी ही चला रहा था।
और टॉम उसे बता देता है कि वो कार गैट्सबी की है।
हाँ, टॉम खुद को बचाता है और गैट्सबी को सजा दिलाने का इंतजाम कर देता है अपनी क्रूरता से।
अगली सुबह निक गैट्सबी को फोन करता है।
जी, काम पर जाने से पहले। और वो गैट्सबी से वो बात कहता है जो शायद उपन्यास का एक महत्वपूर्ण वाक्य है। वे सब सड़े हुए लोग हैं, तुम अकेले उन सबसे कहीं बेहतर हो।
शायद पहली और आखिरी सच्ची तारीफ जो गैट्सबी को सुनने को मिली।
हाँ, उसी दोपहर जॉर्ज विल्सन बंदूक लेकर गैट्सबी की हवेली पहुंचता है। वो गैट्सबी को उसके स्विमिंग पूल में पाता है
और उसे गोली मार देता है।
हाँ, और फिर खुद को भी खत्म कर लेता है।
गैट्सबी की मौत एक सपने का अंत और विडंबना ये है कि उसे उसके अपराधों के लिए सजा नहीं मिली, बल्कि शायद उस सपने को देखने की हिम्मत करने के लिए मिली जो उसकी सामाजिक पहुंच से बाहर था।
और उसकी मौत के बाद वो सैकड़ों मेहमान जो उसकी पार्टियों में आते थे?
कोई नहीं। निक उसके अंतिम संस्कार का इंतजाम करता है, लेकिन लगभग कोई नहीं आता।
डेजी और टॉम तो शहर छोड़कर जा चुके हैं बिना कुछ कहे।
हाँ, सिर्फ निक आता है। गैट्सबी के पिता आते हैं दूर मिनेसोटा से, जो अपने बेटे की अमीरी पर अब भी भोलेपन से गर्व कर रहे हैं।
और वो आउलाइज वाला आदमी?
हाँ, जिसने कभी गैट्सबी की लाइब्रेरी में असली किताबें देखकर हैरानी जताई थी। बस
इतनी भीड़ में रहने वाला आदमी अंत में बिल्कुल अकेला, ये उस समाज की तस्वीर है।
सारी चमक दमक, सारी दौलत कितनी खोखली साबित हुई।
जाने से पहले निक की आखिरी मुलाकात टॉम से होती है, और टॉम
उसमें कोई पछतावा नहीं है। वो अपनी सफाई देता है, कहता है गैट्सबी इसी लायक था।
यही निक उस कड़वे सच को पूरी तरह समझता है। वो टॉम और डेजी जैसे लोगों के बारे में सोचता है।
हाँ, वो कहता है वे लापरवाह लोग थे, उन्होंने चीजों और इंसानों को तोड़ा और फिर अपनी दौलत या अपनी गहरी लापरवाही में वापस सिमट गए और दूसरों को वो गंदगी साफ करने के लिए छोड़ दिया जो उन्होंने फैलाई थी।
ये उस अमीर वर्ग पर उनकी नैतिकता पर कितना तीखा कटाक्ष है। उनकी दौलत उन्हें हर चीज से बचा लेती है, हर जिम्मेदारी से।
उपन्यास का अंत भी बहुत मार्मिक है। निक गैट्सबी के सूने लॉन पर खड़ा है, उसी हरी बत्ती को देख रहा है।
हाँ, और वो सोचता है कि गैट्सबी का सपना सिर्फ उसका अपना नहीं था, वो उस बड़े अमेरिकी सपने का हिस्सा था।
बेहतर भविष्य की वो उम्मीद जो हमेशा हमसे कुछ दूर रहती है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं पर वो और दूर हो जाती है।
और फिर वो आखिरी कालजयी पंक्ति, इसलिए हम आगे बढ़ते रहते हैं, धारा के विपरीत नावें निरंतर अतीत में वापस धकेले जाते हुए।
क्या गहरी और खूबसूरत पंक्ति है। ये उस लगातार चलने वाले संघर्ष की बात करती है, भविष्य की ओर बढ़ने की कोशिश पर अतीत हमें पीछे खींचता रहता है।
तो अगर हम मुख्य विषयों को देखें तो सबसे पहले तो अमेरिकी सपने का वो खोखलापन है, उसका भ्रष्टाचार। गैट्सबी दिखाता है कि मेहनत से तरक्की का आदर्श अब कैसे सिर्फ दौलत और दिखावे में बदल गया है।
और वो दौलत भी अगर संदिग्ध तरीकों से आई है तो भी वो आपको उस पुराने स्थापित वर्ग में जगह नहीं दिला सकती।
बिल्कुल। दूसरा विषय है उच्च वर्ग का, खासकर पुराने पैसे वालों का नैतिक दिवालियापन। टॉम और डेजी जैसे लोग बाहर से आकर्षक पर अंदर से स्वार्थी, लापरवाह,
जो दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करके अपनी दौलत की आड़ में सुरक्षित रहते हैं।
तीसरा, अतीत से पीछा छुड़ाने की या उसे फिर से जीने की असंभवता। गैट्सबी की पूरी जिंदगी यही कोशिश है, जो नाकाम रहती है। उपन्यास कहता है कि अतीत से भागना या उसे दोहराना मुमकिन नहीं।
हाँ, हम उससे बंधे हुए हैं। और फिर है भ्रम बनाम यथार्थ का द्वंद्व।
गैट्सबी की पूरी पहचान ही एक भ्रम है। डेजी के लिए उसका प्यार भी एक आदर्श पर टिका है, हकीकत पर नहीं। और उपन्यास इन सारे भ्रमों को तोड़ता है।
फिट्ज़गेराल्ड की भाषा उनकी शैली भी इसे खास बनाती है। निक का नजरिया जो हमें कहानी दिखाता है, पर वो खुद भी पूरी तरह ऑब्जेक्टिव नहीं है।
और वो प्रतीक, हरी बत्ती, राख की घाटी, डॉक्टर एक्लेबर्ग की आंखें, रंगों का इस्तेमाल, ये सब कहानी को बहुत गहरा बना देते हैं।
तो गैट्सबी की कहानियां में सपनों के मोहक लेकिन कभी कभी खतरनाक स्वभाव की याद दिलाती है,
और सामाजिक बाधाओं की कठोर सच्चाई की भी। ये दिखाती है कि कैसे अतीत हमारे आज और कल पर असर डालता है,
और कैसे अमेरिकी सपने की खोज कभी कभी त्रासदी में भी बदल सकती है। ये कहानी भले ही 1920 के दशक के अमेरिका की हो, पर इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है ना।
बिल्कुल। शायद हर उस समाज में जहां दौलत और दिखावे के पीछे इंसानियत और रिश्ते खो जाते हैं। अनिवार्य क्लोजिंग लाइन, ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।